نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں کو دنیا میں پوری سزا نہیں دیتا، ان کے لیے مؤخر کیا گیا ہے عذاب، مہلت دی گئی ان کو یا اس کو چانس دیا گیا ان لوگوں کو اس دن تک جبکہ ان کی آنکھیں اٹھی کی اٹھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پوری سزا نہیں دیتے دنیا کے اندر۔ ظالم کی تعریف جو ہے ظلم کرنے والا، ظلم کیا ہے؟ یہ انجسٹس، ناانصافی، جو انصاف نہ کرے ناانصاف اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ کسی چیز میں انسان ناانصافی کرے، گھریلو معاملات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں رکھتا، ان کو صحیح نان نفقہ نہیں دیتا، ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، ان کو زبردستی وہ کام کراتا ہے جو اس کے حقوق میں نہیں ہے، نہیں تم یہ کرنا ہے میری وجہ سے کرنا ہے، میری ناک کٹے گی، میرا فلاں ہوگا، اور جو کہ اس کے حقوق میں نہیں ہے، زبردستی سے کام کراتا ہے، مجبوراً اس کو کرنا پڑتا ہے، یہ سب چیز ناانصافی ہے، یہ ظالم ہے۔ کس سے مخاطب ہو قرآن؟ یہ سن لینا چاہیے، یہ بھی ظالم ہے۔ کسی انسان کام کرتا ہے کسی جگہ پر، اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا، پورا نہیں کرتا کام، بہانے بازی کرتا ہے، وقت ٹالتا ہے، یہ بھی ناانصاف ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ کاروبار ہے کسی کا، کام کرنے والے لوگ ہیں، نوکری کرتے ہیں اس کے پاس، ان کے ساتھ صحیح تنخواہ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، لین دین کا معاملہ صحیح نہیں ہے، یا ان کی چھٹیوں کا معاملہ صحیح نہیں ہے، یا جو قانون ہے، رولز ہیں اس کے، گورنمنٹ کے، اس کے مطابق کام نہیں ہے، بھی ظالم ہے۔ اور یہ سب ظلم کے صیغے میں آتی چیزیں، اب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کسی بھی معاملے میں، کسی مقام پر، کسی جگہ بھی انسان ناانصافی کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظالم ہو جاتا ہے۔ اور ظالم کی کئی قسمیں، پھر سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے، سب سے بڑا ناانصاف انسان تو وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، اپنے خالق کے ساتھ۔ کیسے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو اپنے خالق کو مانتا ہی نہیں، یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو یہ بہت بڑے ظالم ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ دیکھیں کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جس کی کائنات ہے، سب کچھ جس کا ہے، हम उसको मानते ही नहीं। अगर मानेंगे भी किसी नखरे के साथ तो फिर हजारों शिर्क कर उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उनको भी शरीक करेंगे। ये बहुत बड़े जालिम है। उसके बाद एक और उसी कैटेगरी में जालिम है वो कि अल्लाह को जान भी गए हैं, पहचान भी गए हैं, मान भी गए हैं, लेकिन उसकी अहकामत को नहीं मानते, हम नहीं करते, नहीं करते। ये वो तो मानते ही नहीं, वो ये मान के काम कर रहे हैं, ये क्या होंगे? जालिम होंगे। इसको जुल्म कहा जाता है, बहुत बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ताला ने मान भी गए, जानते भी हैं, उसके हकामत को समझते भी हैं, लेकिन क्या है, अमल नहीं करते, नहीं करते। तो जालिम ही तो और क्या है। अब जुल्म के साथ ऐसी आयत को समझें, अल्लाह ने कहा जालिम होगा उसको दुनिया के अंदर पूरी सजा नहीं देता कुरान के लफ्ज से। अब इस पर सब कैटेगरीज आ गई जिस जिस मुकाम पर है आदमी, वो सब जालिम है। अल्लाह ने जुल्म के साथ ताबीर किया है, अल्लाह माफ फरमाए। हम भी समाजने में रहते हैं, पत्नी किस कैटेगरी में अपने आप को तजिया कर लें अपना, क्योंकि ये तो जो स्कैन मशीन है जहाँ बैठे हैं, अपने आप देखना है अपने आप को भाई हमें क्या गलती हैं, क्या चीज़ें हैं। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, स्कैन करा ले तो बीमारी पता लग जाती है ना आदमी को, कोई डॉक्टर के पास ना जाए और मशीन के अंदर ही ना लेटे तो कैंसर तो बढ़ता रहता है। फिर डॉक्टर कहते हैं बहुत देर के बाद आप आए, फिर कुलूब में मरद अल्लाह ताला कहते हैं फसाद हमला मरदा, तू स्कैन करा लेता तो बढ़ता ना मर्ज तेरा, तूने खुद ही बढ़ा लिया मर्ज को। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र और करम है, रमज़ान की खूबसूरत घड़ियों के अंदर अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमा रहा है कि हम स्कैन करें अपना बैठ कर इस टॉपिक के। ये भी हमें कौन रिफ्रेश कर रहा है, ये रमज़ान कर रहा है ना ये बात भी कि स्कैन करो अपना भाई, तुम लोग बैठो, क्यों वक्त ज़ाया करते हो रमज़ान में, धूम धड़क के तो हर जगह चलते रहते हैं, मजे तो हो रहे हैं। ये असल तो बात ये है, वक्त यार है, जालिम है हम या नहीं है ये सोच रहे हैं, तो कहाँ जुल्म कर रहे हैं, किस मुकाम पर हमने जुल्म किया है। अगर शिर्क से बचते हैं तो अहकाम पर आते हैं, अहकाम से होते हैं तो हुकूल बात पे आते हैं, ये सब चीज़ें जुल्म में आती हैं। तीन ही कैटेगरीज है ना, या तो अल्लाह के साथ जुल्म किया जा रहा है, या अल्लाह को मान के जुल्म किया जा रहा है, या उसकी मखलूक के साथ जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह हो जालिम है तो स्कैन करने आ जाने, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया में उनको पूरी सजा नहीं देता। ये सजा नहीं है कोई एक्सीडेंट हो गया वो जी सजा मिल गई, सख्त बीमार हो गई जी बड़ी सजा हो गई है, बिजनेस डप हो गया बहुत जी बड़ा सजा हो गई है, सख्त बीमारी आ गई ये हमें सजा मिल रही है। अल्लाह कहता है पूरी सजा देते हैं, ये कौन सी सजा है, ये तो ट्रायल है मेरे चल रहे हैं, ये तो झटके होते हैं, जलजले आ गए, तूफान आ गया, घर के अंदर बीमारियां आ गई, किसी को परेशान कर दिया, किसी को अपाच कर दिया, किसी को फर्ज गिरा दिया, किसी को कोई बीमारी दे दी, कोई सजा नहीं। कहते पूरी सजा आई नहीं, उस सजा को सोचो अल्लाह पाक कहता है जो मैंने मौखर की है तुम्हारे, जिसको मैं टाल रहा हूँ। क्या खूबसूरत कुरान की आयत है, गौर करें इस पर, इस रमजान के मौके पर। सुभान अल्लाह, दिल बाग बाग हो रहा है, क्योंकि पता चल रहा ना अपना, जब मरीज को बीमारी पता चलता है खुश हो जाता है, अल्लाह को चलो या वो इलाज तो होगा ना, लेकिन हम तो ऐसे मरीज हैं कि एक सेकंड में इलाज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बांध जाए आदमी एक सेकंड में इलाज होता है इसका। देखें आप कितनी बड़ी बात है, कितनी सख्त बीमारी है, दुनिया में हम गए स्कैन करे जी आपका तो यहाँ कैंसर है, ये अच्छा चलो शुक्र पता लग गया, चलो इलाज शुरू हो जाता है, आदमी बड़ा खुश होता है, होते हैं देर लगती है किसमें। लेकिन ये जो है, ये जो तरीन बीमारी है जिसका अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि जालिम कि मैं दुनिया में पूरी सजा नहीं देता, जालिम की तारीफ मैंने कर दी आपको कि हम किस कैटेगरी के जुल्म पे हैं, क्या कर रहे हैं, अहकामात को अल्लाह के मानने वाले ही नहीं मानते, अल्लाह जो इबादत दी हम वैसी करते हैं। सबसे बड़ा फरीजा जो है पांच वक्त नमाज बाजमात मस्जिद में, अपने अड्डों पर नहीं, कहां पर, जिसको मस्जिद कहा जाता है, ये हुक्म है, पांच वक्त नमाज बाजमात मस्जिद पर, दुकानों में नहीं, कारखानों के अंदर नहीं, सड़कों में नहीं, नमाज कहाँ होती है, मस्जिद के अंदर अजान के साथ, जो सुन के भागता है मस्जिद की तरफ सब कुछ बंद करके, अल्लाह को ये अदा पसंद है। जहां मशगूल है, जिस जगह मशगूल है, ताले लग गए, इसी लगे तो अल्लाह चप्पे चप्पे पे मस्जिदें लगाई हैं। जो ये काम नहीं कर रहा वो क्या है, क्या है वो? जालिम है। स्कैन कर लो, जालिम है वो शख्स। उसको अल्लाह ताला क्या कहता है, मैं तुझे अभी सजा नहीं दे रहा, पड़ा रहा बिस्तरे में, पूरी सजा नहीं दूंगा। झटके आएंगे और ऐसे झटके तू बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, झटके भी जब पड़ेंगे तुझे मेंटली तुझे पागल कर दूंगा, किसी और तरफ लगा दूंगा, किसी और तरफ। लेकिन अभी भी ये सजा मेरी शुरू नहीं है जालिमों के लिए। जालिम जो है सबसे बड़ी बड़ी सबसे बड़ा गुनाह है जुल्म करना, याद रखना। जुल्म ना किसी जगह भी जुल्म ना, अल्लाह जालिम जुल्म के जुल्म को तो चलने ही नहीं देता, जुल्म को तो चलने ही नहीं देता। किसी खत्ते पे अगर जुल्म हो रहा है, अल्लाह उस खत्ते को रहने ही नहीं देता, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। बहुत एहतियात हमें करनी चाहिए अपने घरों में, बाहर, बीवी बच्चों में, हराम में, सबसे बड़ा अपने खालिक के साथ जो अहकाम से हमें दिए हैं बराबर काम करें। पूरा अजाब नहीं है, क्या मौखर किया है मैंने, अब हदीस आप कुरान बताते हैं। पूरा अजाब नहीं दी, पूरी सजा नहीं, क्या क्या हुआ है? मौखर, मौखर समझते हैं लेट किया हुआ है, उसको मैं टाला हुआ है, मोहलत दे रहा हूँ। अब जरा गर्दन झुकाएं, ये मोहलत नहीं है हमारी, अल्लाह हो मोहलत दे रहा ही नहीं दे रहा। जो हालात हमारे हैं, जिसको हम दीन समझ के प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम दीन कहते हैं, सेल्फ मेड, ये जी मेरी नमाज सही, ये मेरी जमात सही, मेरा ये मेरा सर, और बमुताबिक उस किताब के नहीं जो हमें बताती है कि सही है और गलत है, बस मैंने उस किताब के मुताबिक नहीं रखता मेरा वो चीज़, बस मैं चलता है ठीक है जी चलता है, वो दीन नहीं चलता। फिर क्या दिया अल्लाह ताला, हमें चांस दिया है, वी आर गेटिंग चांस फॉर दैट। ये अल्लाह का बड़ा करम और शुक्र है, अल्लाह सुबहान तला ने मौका दिया है। कुरान बताते हैं अभी इसमें चांस दिया है, किस वक्त तक? उस दिन तक। कौन सा दिन होगा? कि जब आंखें खुल जाएंगी, अल्लाह अकबर, आंखें निगाहें खुल जाएंगी। तो ये दो मौके जाहिर करती है ये अल्लाह ताला की मोहलत, कब तक? एक तो वाकई जब पता ही, जब फूंक निकलती है तो सब खुल जाता है, मुंह भी खुल जाते हैं, आंख भी खुल जाती, सब खुल जाता है, खुलता ही नहीं खुलता। तो आंखें तो खोल के आदमी देखने के लिए खोलता है या नहीं? तो वो क्या देख रहा है? सुभानअल्लाह, वो क्या देख रहा है जी? हाँ, असल नज़ारे देख रहा है, उन फरिश्तों को देख रहा है जिसके लिए हमेशा सुनता रहता पूरी जिंदगी कि वो आएंगे और तेरी जान निकालेंगे। देख रहे हैं उनको, आगे खोली देखते हैं ना, कुछ तो देख रहा है, वही दिख रहा है आगे, वही लोग। ये नहीं कि उसको नजर नहीं आ रहा, ये दुनिया वो दुनिया बन जाएगी, वो दुनिया ये दुनिया बन जाती है, ये गायब हो जाता है। उसके सामने जितने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, माँ, बहन, भाई खड़े हैं, फ्रिश विजन गायब। अब कौन नजर आ रहा है? वो फरिश्ते जिनका जिक्र कुरान में किया जाता था, जिनकी बातें मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ। वो दिन आएगा नहीं आएगा? और दूसरा दिन वो भी है इसमें, वो कौन सा दिन है? वो आखिरत का दिन है, उस वक्त यहाँ खुल जाएंगे इंसान खुल जाएगा कि क्या कहाँ आ गया। उस वक्त तक अल्लाह ताला कहता है उस दिन तक मैं मोहलत दे रहा हूं कि मौत से पहले चांस दे रहा हूं उनको, क्या कर लें? कि वो जो हिसाब किताब जो मेरी चीजों पर नाइंसाफी कर रहे हैं उसकी तैयारी करें। क्या चीज है जो आंख खुलने के बाद जहां फेंक दिया जाता है वहीं से काम शुरू होगा ना असल? उसी की अल्लाह तआला उसी की तैयारी के लिए मैं तुम्हें डील दे रहा हूं। मस्त नाम फिरो दुनिया के अंदर, उस उन चीजों की तैयारी करो जो कब्र के अंदर तुमसे मामारत होंगी, जिसमें तुम्हें फला मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी होगी। हम क्या कहते हैं, तीन सवाल है ना, जिसमें इंसान कब्र उतारते हैं तो सवाल किए जाएंगे, कहते हैं रब कौन है, मिन रब्बो का, मिन रसूलों का, मिन दीनों का। ये मोहलत किसी चीज के लिए दी है ना, मैं इसके मुताबिक सवाल करो ताकि तुम जब उस दुनिया में पहुंच जाओ जिसके लिए तुम्हें मौखर किया गया था, अगर तुमने इस चीज तीन चीजों को तुम पा लिया, अब तुमसे जाती है तुम्हारे आ जाएंगे पूछने वाले, और तुमसे पूछ लिया, तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम कामयाब हो गए। लेकिन हम तीन सवालों को समझते हैं, ये कामयाबी सिर्फ कब्र की है, ये समझने थोड़ी बात। इससे अगले स्टेज पे जो असल जो कामयाबी जन्नत और दोजख की होगी, उसके लिए तीन सवाल नहीं है बल्कि कितने सवाल हैं? पांच, फाइव। ये रिमाइंड कराना है ना सारा, ये हमें रमजान बता रहा है, क्योंकि मोखर के जो लफ्ज है ना उसके मतलब रमजान है कि मैंने तुम्हें एक और रमजान दे दिए। बात समझ आ रही है क्या बुड्ढो? तुम्हें एक और रमजान मिल गया है, पहुंच गए अल्लाह के फजल से, मेरे करम से तुम आ गए हो यहां तक, मोखर कर दिया है। अब बातें सुन लो कुरान की क्या कहता है कि किया क्यों, कि तुम्हें रमजान में इसलिए तक पहुंचाया है, रोजे रखने के लिए नहीं पहुंचाया, तुम इसलिए पहुंचाया है मस्जिदों में जो है फंक्शनों के लिए नहीं पहुंचाया, रंग ये जो तमाशबीनियों के लिए नहीं पहुंचाया, मैंने रमजान तुम्हें एक चीज के लिए दिया है, मुखर मैंने तुम्हें किया है। किस चीज के लिए दिया? कि तुम वाकई आज इस रमजान में बैठ के तुम सोच सको जो तुम्हें रिफ्रेश करा रहा है। कि तीन सवाल तो कबर के है ना, किस पे इक्तफा ना करना, इससे तो कामयाबी नहीं हुई तुम्हारी, कामयाबी किस पर होगी, जन्नत और दोजख की? पांच सवाल है रमजान बता रहा है, उस पर आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। पहला क्या सवाल है, जब अल्लाह के हुजूर इंसान पेश होगा ना तो बस इसके बाद मामला चलेंगे, पहले इंसान खड़ा कर दे, हर इंसान के साथ ही होगा, पहला सवाल उसे यही किया जाएगा कि हाँ भाई जमाल, सबसे बड़ी नेमत तुझे मैंने क्या दी थी? उम्र दी थी, जिंदगी दी थी। चल भाई, तो अपने रब को बता कि तूने ये जिंदगी कैसे गुजारी, क्या खूबसूरत सवाल है माशाल्लाह। कैसे कैसे जवाब आएंगे लोगों की तरफ से उस वक्त पता चलेगा। अल्लाह हू अकबर, कोई कुछ कह रहा हो वहां को झूठ बोल सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो झूठ बोलेगा इससे बाहर पहुंच जवाब देंगे आप, सवाल कहेंगे खड़ा होगा आप सोच रहा होगा मैंने जिंदगी कहाँ गुजारी, अब सोच लें आप कहाँ गुजारी जिंदगी हमने, अब तक की जिंदगी जो हमारी कैसे गुजरी है, इस चीज पे जो हावी रही है हमारे पर उसको जिंदगी कहते हैं। हावी समझते हैं जिसने ओवरकम किया हमें, ओवर पावर रही है हमारे पर, हमारे दिमागों पर, हमारे वजूदों पर, हमारे हाथों पर, हमारे जिस्म पर, जो हमें कंट्रोल करती रही, वो ख्वाहिश वो जिंदगी होती है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना होता है। वो जब वो पावर होती है ना, ओवर पावर होती है वो चीज, तो उसे नमाज पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उधर जाऊंगा तो मैं करूंगा, उसे जाऊंगा तो मैं करूंगा, उन्होंने दसना है तो उन्हें पहले 3,000 में उधर लगा देना, 2,000 लगा देना, ओवर पावर है ना जो चीज आपकी, वो एवरीवेयर गोइंग, वो नमाज नहीं है। बात समझ रहे, इस जिंदगी का सवाल पूछा जा रहा है, जिन्होंने इस जिंदगी को ओवर पावर अल्लाह की खातिर किया होगा, कि हर वक्त खौफ खुदा जिनके आंखों के अंदर होगा, जिसके जिस्म में होगा, उनकी नमाजों के अंदर भी वो ख्यालात नहीं होते, ये नहीं कि जिक्र करने बैठ रहे हैं, टेलीफोन सामने रखे, मैसेज देख रहे हैं, कुछ कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, साइलेंट हो गया, ये जिक्र कर रहे हैं, तो हौसला है। तो ओवर पावर देखें क्या चीज है हमारे जहनों पर, खौफ में क्या चीज नजर आती है, क्या किस हमारे कंट्रोल में हमें करती है हर चीज, दुनिया के कंट्रोल में या अल्लाह के अहकाम के कंट्रोल में इंसान है, फिक्रमंद किस चीज पे इंसान रहता है, जिसको कहते हैं जिंदगी गुजारना, जिसने फिक्र आखिरत पे जिंदगी गुजारी, फिक्र अल्लाह पे जिंदगी गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला को जवाब देगा कि मेरी जिंदगी जो थी मौला करीम, कहता तुझे बताने की जरूरत नहीं, तेरा तो एक एक हिसाब हमारे पास है, कि तेरी गलियाएं, तेरी आंसू, तेरा रोना, तेरी तहजुदें, तेरा फिरना, तेरा चलना, गम एक था तुझे, मेरे आखिरत में क्या फिक्र होगी, ऐसे इंसान है या नहीं है? अब तो स्वामी से एक भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अक्सर तो ये हमारा 99.9% यही मुसलमान हो रखा है, इसी के नाम इस्लाम और मुसलमान होना है, तभी तो अल्लाह पूछेगा, हमने जो कलमा पढ़ा है तो ये हमारा स्टैंडर्ड ये है, ये हमारा स्टैंडर्ड ये है कि फिक्र दुनिया कुछ भी ना हो। जिस सहाबा ग्राम की जिंदगी जो हमारे सामने है बड़ी, वो ये सिखाती है, शॉर्टकट नहीं चलता इस्लाम के अंदर किसी किस्म का, तो ये इस उम्र का जवाब हमने देना है। अब हम यहां बैठे हैं, जिंदगी कितनी गुजर गई, कहां से जमा करें, क्या करें, दूसरा सवाल होगा, और सवाल भी अल्लाह कर रहे होंगे। इसमें से अल्लाह पाक जिंदगी में से एक चीज चुनेंगे, देखें, हालांकि वो भी जिंदगी के अंदर आती है, वो क्या है, शबाब, जवानी का मैं तू क्या करता है ये बता, अल्लाह वहां से जान छुटेगी ना तो फिर क्या आएगा, जवानी है, जवानी जो कहते हैं मस्तानी, उसमें तो आदमी जो होता है वगैरह बेलगाम होते हैं ना इंसान, लेकिन अल्लाह की किताब में नहीं होता, उसके जिम्मेदार उनके माँ बाप होते हैं कि क्या क्या काम करा रहे हैं अपने बच्चों से, क्या क्या काम देख रहे हैं अपने बच्चों के, نمازیں چھوڑتے دیکھ رہے ہیں، بدماشی کرتے دیکھ رہے ہیں، خرافات کرتے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ ان کے ذہنوں پر فکر کس کا ہے، اوور کام کر رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تو وہ فکر نہیں کرتے، کرتے یہ بھی لگے نہ لگے رہنا کوئی فکر نہیں پڑ رہا، کرے رہے ہیں اپنے کام بھی کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے، مال چاہیے بس، ہمارا یہ کام چلتا رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، بچہ جو جایا کرتا رہے، چھٹی اس کی، کچھ کرے نہ، بچوں کی دیکھ بھال، نہ بچوں کو پہچاننا، نہ بچوں کو پانا، صدیوں میں جا کے بچوں کو ملا ہے، 3 مہینے کو بچے کو دیکھ رہا ہے، ایک ہی جگہ رہتے تب بھی نہیں ملتے، باہر والے تو کیا ملتے ہوں گے جو 6-6, 7-7 مہینے 7 سال نہیں ملتے اپنے بچوں کو، وہ کہاں گے حقوق بچمی بچوں کے، وہ ظالم آدمی، بڑا ان ٹچ چیز ہیں، یا غور کریں یا آخرت کا سامان ہے، بہت ہی مومن کے لیے جو ہے آسان بھی بہت ہے اور کمپلیکیٹ بھی ہم نے بہت کیا اس کو، صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ بس ہو گیا کام جی چلو چل گیا معاملہ، دوسرا سوال جوانی کے حساب دے، اور جوانی کیا حساب دے یاد ہے، جوانی سب سے جس کے عمر ہی خراب ہو تو جوانی بھی حساب کیا دے، اللہ معاف فرمائے۔ تیسرے پہ آ جاؤ، جیسا سوال پوچھا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے، اللہ یہ سوال ہوگا مال کے بارے میں، سب سے مال پہلا سوال تو ہوگا، مال میں بتاؤ یہ تم نے کمایا کیسے، کتنا بڑا سوال ہے، کمایا کہاں سے، کیسے کمایا، جو میں نے احکامات جاری کیے تھے کمانے کے بامطابق اس کے تھا مال کمانا، یا جو چیز تیرے اوپر پاور کر رہی تھی خواہشات اس کے مطابق تھا، کتنا بڑا سوال ہے، مجھے سکین ہو رہا ہے یا نہیں صحیح، اس کو کہتے ہیں سکین، تو نے میں بتائے ہوئے قانون کی طرف رخ کیا تھا مال کماتے ہوئے، جس جگہ بھی تو مال کما رہا تھا، مال کر رہا تھا، تیرے اندر ذہن میں تھیں میری باتیں کہ یہ اصول ہیں کسی جگہ مال کمانے کے، تجارت کرنے کے، نوکری کرنے کے، یا کسی کام کرنے کے، یا بزنس کرنے کے، جو ہم نے قانون بنائے تھے، یا ہم کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے کہ یہ جو تو کما رہا ہے، کہ یہ میں نے حکم دیا تھا کہ اس طریقے سے تو بیوی بچے کے پیسے کما، یہ حکم تھا حقوق کے اندر آتا تھا یہ بات کہ تو یہ طریقہ ہے تیرے بیوی بچوں کو تو کمانے کا، اور کیا تیرے بیوی بچوں نے تجھے اجازت دی تھی اس طرح کمانے کی تجھے، میں جی بیوی ہم تو بیوی بچوں کے کمانے گئے ہیں جی، بس ادھر جا رہا ہے، ادھر گیا ہوا، ادھر گیا ہوا، پیچھے نہ بیوی کو پتا نہ بچوں کو پتا، اور دوسرے پالتے پھرتے ہم دیکھتے پھر کہ جی کما بیوی بچوں کے لیے کما رہے، دو دو تین تین شادی کی ہیں چھوڑا ہوا ہے، یہاں روٹی کمانے آئے، وہ اندازہ لگا، وہ کہاں کی نماز ہے، وہ کہاں کا ذکر ہے، جس انسان کے اندر صافی نہ ہو، اسکین ہو رہا ہے بتا رہا ہوں آپ، ٹائم اٹس ٹائم فار اسکیننگ ناؤ، رمضان سوچ لیں ذرا اپنے آپ، منع تو اللہ نے بتا دیا کہ مقرر کیا ہوا ہے میں نے، اب ایک چانس دیا ہے میں نے تمہیں رمضان کا، تیسرا بہت بڑا سوال ہے مال کا، کیسے کمایا، میرے قانون کے مطابق تھا پورے اسی کے مطابق، کہیں سے بھی کوئی حرام تو نہیں داخل ہو رہا تھا اس میں، سب سودی حرام نہیں ہے، بہت سی چیزیں حرام ہیں، بہت سی چیزیں، جس ملک میں آپ جا کے مال کما رہے ہیں کیا ان کے قانون اور پرنسپل کے مطابق کما رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، انہوں نے جو آپ پر قانون رکھے ہیں، ٹیکسز رکھے ہیں، جو کچھ رکھے ہیں، کیا ان کو فل فل کر رہے ہیں آپ، وہ بھی شریک کہتے ہیں کہ جس ملک کے آپ رہے ہیں، جس سے آپ مسلمان جا کے رہتے ہیں نا، اس کا اختلاف نہیں ہے، صرف ایک جگہ پر جا کے ہم ڈپارٹ ہوتے ہیں، وہ مذہبی کہ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کچھ ہمیں نہیں کہتے، بس یہاں ہے معاملہ، مذہب کا معاملہ تک ہے ہمارا، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، باقی معاملات میں وہ اس معاملے ہمیں روکتے ہیں کہ بھائی نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، مسجد اپنی گرا دو، قرآن نہ پڑھو، تو پھر اس معاملے میں آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ جگہ ہماری سوٹ نہیں کرتی ہے اسلام کے لیے، تو اس میں حکم کیا ہے، تو ان کو مارو، استغفر اللہ، ان سے ناراض ہو جاؤ، وہ تو پتہ ہی نہیں ان کو، اس کا اصول یہ ہے کہ بھائی سوٹ نہیں کرتی تو پلیز آؤٹ، آپ جا کے کسی اور جگہ مائگریٹ کر جائیں، ہجرت کر جائیں، وہ ہجرت کر کے دکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہجرت کیوں کی تھی، مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں پریکٹس نہیں کرنے تھے، وہ تو آپ کا گھر تھا، آپ کی پیدائشی جگہ تھی، آپ تو وہاں رہتے تھے، ہم تو کسی اور جگہ جا کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑا صاف و کلیئر وین اسلام دیتا ہے اس چیز کا، खुद के उदन कबूल किया, ठीक है उनका कानून है, आपको पसंद है करें, आप रह सकते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती करेंगे जो हम करें जी हमें हमने वही करना है, ये तो गलत बात है। ये तो हम हमारे साथ हम तो नाइंसाफी कर रहे हैं हकीकत में। हमारे मुल्क वो जिम्मेदार इस मुल्क, आपके मुल्क कुछ नहीं होता, बेहतर ये कि हम तो चाहते हैं आप ऐसे रहे, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ आप उनको समझा सकते हैं, समझ जाए नहीं समझे अपना रास्ता ले, जहाज जा रहे हैं बड़ी फ्लाइट जाती है माशाल्लाह, और जो यहाँ रहता है उसके लिए तो वो ईमान बेच कर रहते हैं, फिर लोग वो कॉपरेट करते हैं, वो कौन हो गए लोग जालिम, देख रहे हैं मेरा बच्चा हाल खराब हो रहा है, मेरी बीवी का हाल खराब हो रहा है, मेरे बच्चों को कंपेयर कर लें उन लोगों से जो हमारे दीन हमें बताता है कि इस तरह बच्चों को चाहिए, लेकिन किस यहाँ बैठे एक मस्जिद बना के बैठे, ये दीन का काम, ये दीन का काम नहीं है। दीन का काम तो वो है कि जब आप दीन को प्रैक्टिस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अल्लाह, मजबूरी तो आपकी अपने पेट की है जो बैठे, आपने अल्लाह के ऊपर किसको प्रेफरेंस दी है, पेट को दी है, इसके अनुर इतने हम चोर बने बैठे हैं, ये पेट के लिए बने बैठे हैं कि चलो हो जाए जो कुछ हो रहा है, औलाद कर लें कुछ कर लें, किसकी मुझे मैं पूछता हूं कि किसकी औलादें हैं मुसलमान है सही तौर पर, तो इनका तो कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है, कसूर तो हमारा है, ये क्या हुआ ना इंसाफी हुई है ना हुई, कहां से कमाया जी, हमने ईमान बेच के कमाया, हमने नमाजें बेच के, हमने अपने बच्चों को औलादों को बेच के कमाया, हमने तेरे कुरान को बेच के कमाया, हमें पता था कि सब कुछ जो घर के हमारे 99 जो हमारे मामलात हैं वो क्या है अकाउंट इस्लाम नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इनकी बात को एक्सेप्ट किया, हम रहे, इनका फॉल्ट नहीं है हमारा फॉल्ट है, तुम्हारी इजाजत थी कि दुनिया खुली है किसी जगह जाओ, जाओ कुटिया में बैठ जाओ, लेकिन हुक्म मोमिन के लिए यह है कि किसी माशरी हालात की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी हालात की वजह से वो अपने दीन को नहीं बेच सकता, जाके उन तकलीफों को बर्दाश्त करके अपने दीन को प्रैक्टिस करे, समझ आ रही मेरी बात नहीं आ रही, उसको कहते हैं इस्लाम। हाँ अगर माफ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी झगड़े लड़ाई कोऑपरेशन के साथ आप कर सकते हैं, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ हमें नहीं कहता कोई भी, कोई कह रहे हैं हमें कोई भी नहीं कह रहा, माफ कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारी औलादें भी दीन पर चल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना, आकर हम औलादों को सबसे बड़ा हक पैसा देना, पेट में रोटी डालना और ये गाड़ियाँ दिलाना और ये माल पैसे करना, ये नहीं है टेलीफोन दिलाना और ये सब कुछ करना, इसका नाम नहीं है हकूक, हकूक नाम है उसका कि जो अपने बच्चों को वो हक दे जो सबसे बड़ा हक है, यानी अल्लाह को अल्लाह की ताबेदारी और पहचान पैदा कर दे अपने बच्चे के अंदर, वो कुरान ना दे कि जो कुरान के खिलाफ उनको चला रहा हो, हम तो कुरान भी पढ़ा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, ये यहाँ है ही नहीं मामला, इस्लाम ये चीज़ नहीं है, अनजस्टिफ तो और बड़ा जुल्म है। बड़े एक बहुत डीप बात करता हूं मैं तो, हमेशा सच बात करता हूं, ये मशीन जो बन गई आलमाओं की और उलमाओं की, जरा उनके जाकर देखें हालात क्या है, ये सेटिस्फाई कर रही है हमें चीजें बुराई की तरफ, सवाल क्या किया जाएगा जो अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, पूछ जालिम का लफ्ज पहले आया इस आयत के अंदर, फिर आया सवाल कि कमाएगा उसे जी, सबको ये इस तरीके से हमने कमाया, उस मिले क्यों गए और हमने माशाल्लाह सब कुछ बर्बाद करके हमने पेट भरा आपका माशाल्लाह, अच्छा उसमें कोई अच्छे लोग आ गए जिन्होंने सही कमाया, उसके अगला सवाल होगा तुमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या क्वेश्चन होगा, उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, अच्छा भी तुम्हारा मामला बिल्कुल सही था, सही कमाया तुमने, पैसा वैसा तुम्हारा बिल्कुल ठीक था, कहीं मतलब ऐसा नहीं हुआ, तो खर्च कहाँ किया, सुभान अल्लाह, आ तो गया अल्लाह के कानून के मुताबिक, पैसा तुमने कमा लिया, नौकरी करते थे भी हलाल काम आता था जनाब, टैक्स भी पूरा करते थे अपने, फर्ज सही ठाई था, ठीक ठाक था वहाँ, तो बिल्कुल सही है, खर्च कहाँ करते रहे, क्या उसी अंदाज से खर्च किया, उन्हीं राहों में खर्च किया, उसके मुताबिक खर्च किया जो मेरा कानून कहता था, या उसके अगेंस्ट उन खराफात में हराम जगहों पे खर्च किया जो कुरान मना करता था, स्कैन योरसेल्फ नाउ, सोचो कमाने पे तो हम नाश करने लगते थे, हमने बिल्कुल सही कमाया, हमने बिल्कुल ठीक पैसा कमाया, हमने सब कुछ सही किया, लेकिन खर्च भी फिर आ जाता है, कैसे कैसे नाजायज अल्लाह जब पैसे देता है इंसान को खर्च करता है खराफात के ऊपर, दुनिया दुनिया उसी पे खर्च करेगा जो और पॉलो कर रही है उसको, और पॉलो करती है उसको, असराफ पे खर्च करता है, अच्छा खासा सोफा होता है घर में, आदमी बैठ सकता है उस पर, साफ फटा नहीं, नहीं जी नहीं, लोग क्या कहेंगे, बस मैचिंग करो जी, इसको इसको भी मैचिंग करो, इसको भी मैचिंग करो, इसको मैचिंग करो। हराम कमाल है, जो हलाल कमाता है वो कभी इसे काम नहीं करता, जो हराम जमा करता है ना बचा बचा के मुक्त, फिर उसको ये मस्तियां सूझती हैं, इसको इसराफ कहा जाता है। बच्चा पैदा नहीं होता उसके नाम की प्लेट निकाली जा रही है पहले गाड़ी पे, अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी इसको होश नहीं आई, होश ही नहीं आई होती, प्लेट पहले आ गई मर्सिडीज की, स्कैन हो रहा है, तैयार हैं इसके लिए हम जवाब देने के लिए सोचे। बड़े सख्त सवाल है ये, जो पांच सवाल मैंने आपकी खिदमत बताए, अल्लाह ताला कहता है इन सवालों के लिए मैंने क्या दिया तुम्हें, मोहलत दी। फिर आयत पढ़ता हूं कि जालिमों को मैं, जुल्म करने वालों को मैं दुनिया के अंदर पूरी सजा नहीं देता, पूरी का लफ्ज है, कंप्लीट सजा होगी क्या आप सोच, पूरी सजा नहीं देता, मोहलत देता, ताखिर करता हूं। चार हो गए, पांचवा सुने, पांचवा सवाल फिर कंप्लीट हुआ। तीन सवाल तो वो तो कब्र के थे, असल सवाल तो ये आ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं, आप तैयारी इसकी करनी है। पांचवा सवाल, जो तुझे इलम दिया था उस पर अमल कितना था, सुभान अल्लाह, सोचिए कौन खड़ा होगा उसमें, ओ लाइन लगी होगी माशाल्लाह, खाली उलमा थोड़ी होंगे, वो तो जो दारुल उलूम में पढ़े गए हैं वो भी आलिम हैं, उन्हें पढ़ा है, उनकी तरफ क्यों देखते हैं ये सवाल हो रहा है। हम समझते वो ही, हम तो बचे हैं इससे, ला हौल वला कुव्वता, हर आदमी मुसलमान आलिम है, याद रखें उलमा को भी दर्जे हैं ना, वो तो हाई क्लास ग्रेड पे चले गए ना कि उन्होंने बढ़ते चले गए, वो इस इलम का सवाल पूछते हैं। इलम कहते हैं जानने को, कि जो तूने जाना था उस पर तेरा कितना था, मुझे बताया, हाथ खड़ा करे हर जो सुन रहे, पूरा उम्मत हाथ खड़ा करे कि नमाज के बारे में कौन नहीं जानता, बा नमाज जमात मस्जिद में जाके किस में फर्ज है, पांच वक्त, और उस वक्त जो कारोबार करता है, दुकान करता है, सब कुछ का क्या चीज होती है, हराम हो जाता है ना, सब हराम, कुल्लू ना हराम। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप सबको पता है। अब इस पर अमल किसका था, जी हम इस मुल्क में जी, अब जॉब ऐसे हम क्या करें, ये एक्सक्यूज है, शरीयत ने दी है ये बात, फिर हल किसका क्या है, माई गेट ये इस्लाम है, लगना लाइन में इसका नाम इस्लाम, नहीं आंख बंद कर दबाई जाओ, बस आए जा रहा है, आए जा रहा है, इसके पास दबाए जाओ। सबसे पहला इलम जो इंसान के पास, हर एक के पास है, हर बच्चे के पास है, बच्ची के पास है ना, नमाज, इतनी बेहतरीन फर्ज अल्लाह पाक ने दी है जिस इंसान को इनकार ही नहीं कर सकता, नो वन कैन रिफ्यूज इट, सबसे बड़ी चीज है। आलिम है नहीं, हम बताते रहे इलम में था, किसको इलम नहीं पता कि भाई झूठ बोलना हराम है, हराम तरीके से माल कमाना हराम है, किसी के पैसे जेब में डालना हराम है, किसी के साथ बदकारी करना हराम है, किसी को गाली देना हराम है, किसी की मुनाफत करना हराम है, मस्जिदों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना हराम है, हम जानता आदमी नहीं जानता, तो आलिम नहीं है वो, उसको उसके उसके इलम के मुताबिक सजा दी जाएगी। अगर जो इलम कहेगा अल्लाह कहेगा मुझे पता है तेरे पास कितना इलम है, अल्लाह तआला मुझे तो इतना इलम था कि नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए और ज़कात देनी चाहिए, और मुझे तो इसके अलावा कोई इलम ही नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता सदका देना चाहते, ऐसे लोग होते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता सदका देना है, या मुझे नहीं पता था कि ऐसे काम करने, मुझे तीन चार इलम थे मुझे तो, मैं जो आपने फर्ज मुझे दिए थे पे हज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, कहता इसको जन्नत में ले जाओ, और हाई मुकाम उलमा के दर्जे में उसको रखा जाएगा कि आलिम बामल है ये शख्स, जितना जाना उस पर उसने पूरा अमल किया माशाल्लाह, हाई मुकाम दिया जाएगा उसको, जानते हैं कुछ ना कुछ जानते हैं, उसके मुताबिक हमारा अमल है। सुबह से लेकर शाम तक इन पांच सवालों के मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा सुभान अल्लाह वो पास होगा, वो पास होगा, और फिर उसके साथ जितना बड़ा बड़ा आलिम होता जाएगा, अल्लाह जो बढ़ता जाएगा, हदीस फिका मुहद्दिस जिसको दुनिया टाइटल दे जाएगी, शेखुल हदीस शेखुल बनते जाएंगे ना, उसी दर्जे उनके साथ हिसाब किताब बढ़ते चले जाएंगे सुभान अल्लाह। एक एक किताब निकाली जाएगी, एक एक सफा निकाला जाएगा, एक एक हदीस निकाली जाएगी, या तो उनके जन्नतों के मुकाम बनेंगे, बढ़ते 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 उनको कितना मुकाम मिलेगा कि कुर्ब रसूल सरस में पहुंच जाएंगे, उन्हें इलम बढ़ाएगा। یہاں تک جو خواہشیں ہر مومن کی کہ قرب ملے پڑا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس مقام تک درجے پر ان کو پہنچایا جا رہا ہوگا, ان کو میں کرام پہنچ رہے ہوں گے, وہاں تک جائیں گے, جتنا علم جتنا عمل بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے درجات ہوں گے, اور جتنا علم اتنی غداری اتنی جہنم کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے نیچے کی طرف. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, یا تو وہ علم اس کو اوپر تک لے کے چلائے گا یا علم نیچے تک جہنم کے گڑے تک لے کے چلے جائے گا. ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. انما عباد اللہ, کیا ہے انما عباد اللہ, خشیا سے میرے ذہن میں نہیں آ رہی, ہاں یخش اللہ عباد العلماء, کیا خشیت اللہ تعالیٰ کہنا, علماء جو ہے ان کی تعریف یہ کی ہے کہ سب سے اعلیٰ اونچا عالم اس کو اللہ نے کہا ہے جس کے دل کے اندر خشیت ہو, خشیت ہوگی. من عباد العلماء, تمام جتنے بھی ہیں ان سب سے زیادہ بلند مقام کس کا ہوگا؟ علماء کا. کون سے عالم؟ جن کے اندر خشیت خوف خدا ہوگا, ہر عمل ان کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے, اس دن درجے بلند چلائیں گے. اور جو نیچے جائے گا وہ نیچے جاتے جاتے کدھر چلا جائے گا؟ جہنم کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا. سات درجے ہیں جہنم کے. تو رمضان کہہ رہا ہے کہ تمہیں مہلت میں کون کہاں, مہلت میں اللہ نے تمہیں کہاں بھیجا ہے؟ ایک بہت ہی پیارے مہینے میں مجھے ہمیں عطا فرما دیا اللہ, رمضان مبارک. اس سے بہترین چانس ان سوالوں کو سمجھنے والے کے لیے شاید نہیں ہو سکتا. اس سے بہترین مہلت, اس سے بہترین چیز ہم جیسے ظالموں کے لیے جو ظلم ظالم ہیں, نہیں ہو سکتا کہ آج رمضان ہمارے پاس موجود ہے. آج رمضان ہمارے پاس موجود ہے, اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس موقع پہ بات کر رہا ہوں کہ اینڈ آف رمضان ہے یہ, اور اینڈ بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آج شب قدر ہے, 29 آج تاریخ. اس وقت یہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی مجھے اپنے لیے, اپنے صلاح کے لیے کہ بھائی مجھے سکین کرنا چاہیے. آج کے بعد یہ 29 سے لیے یاد, 29 جو شب قدر آج کی ضائع ہو گئی, مکمل سکین کیے بغیر میں نے گزار دی اس کو, بس پھر تو کام ختم. پھر یہیں حدیث آتی ہے, نبی کی شہادت ہے کہ جس نے رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی اس سے زیادہ بہت وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بہت قریب ہے اور رات آنے والی ہے شب قدر. دوستو یہ منانے والی چیز نہیں تھی, بہت سیریس چیز ہے. سیریس سیمنٹ ہے ہماری لائف کے, سیریس سیمنٹس ہیں خدا کی قسم. یعنی کون آدمی, میں اکسکین کیا تو میں نہیں سمجھتا کون آدمی جو ان پانچ سالوں کے سوالوں کو جواب دے سکے گا. کون بتائے اپنی زمانے کے بارے میں؟ کون بتائے اپنی عمر کے بارے میں؟ کون بتائے اپنے مال کے بارے میں؟ کون بتائے مجھے کہاں سے حساب لائیں اس کا, کس طرح کریں اس کو؟ پہلے مجھے بتائیں کیسے بچ سکتے ہیں. اس پوچھنے والے نے پوچھ رہے ہیں, اس جہاں کے حساب ہے, وہاں کا دستور ہے, وہاں کا قانون ہے میرے رب کا کہ تم نہیں بچ سکو گے. چند دن کی مہلت, کہتے سزا ہے ہی نہیں تمہیں یہاں, چند دن کی مہلت ہے, یاشی کر لو جو کرنا ہے, بلکہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے, پھر اپنی شریعت کے مطابق اپنے قرآن کے مطابق. لیکن دین یہ نہیں ہوگا. میں اپنے دین کے مطابق, کس کے مطابق سوال کمپیئر کرے گا اللہ پاک؟ یہ کمپیئر کس سے ہوں گے سوالوں کا؟ قرآن حکیم. ایک طرف قرآن کھلا ہوگا, ایک طرف میں کھڑا ہوں گا. جب میں کہوں گا یہ ایسے گزارا کہ تھا, یہ میرا حکم تھا قرآن میں, ایسے تھا, کیسے کر, نہیں بھاگ جاؤ. ہر چیز کا کمپیئر, مال کا, اولاد کا, مال کا, ہر چیز کا جو کمپیئر کس سے کیا جائے گا؟ قرآن حکیم سے کیا جائے گا. دیکھا ایسا, یہ تو عمل کے لیے آیا ہے قرآن, مقصد حفظ نہیں تھا اس کا, عمل تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ تو اس کا ایک شان ہے کہ آدمی اس کو حفظ بھی کر سکتا ہے, اس کو ماشاء اللہ تلاوت بھی کر سکتا ہے, 10-10, 15-15 خرچ پڑھ بھی سکتا ہے. کوئی آدمی حافظ نہ ہو, کوئی آدمی نے 15-20 قرآن ختم نہ کی ہوں, کسی آدمی کو قرآن پڑھتا نہ ہو, لیکن زندگی اس کے مطابق قرآن کے تو وہ پاس ہو گیا, کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس نے اپنے کام کر لیا ہی اس پاس. تو یہ جو ہے ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم سے کہاں ہے رمضان میں. پھر نفس کا دھوکہ کھا گئے, اور جو چیز دنیا بھر میں غلبے میں ہے اس کے مطابق پھر ہم یہ رمضان گزار دیا, اور یہ آخری رات جو شب قدر کی پھر یہ گزار دی, تو پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس سے زیادہ بدقسمت ہے ہی کون ہے. اس کی ان سوالوں کو جب تک آپ کمپیئر نہیں, آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے آج, ان سوالوں کو ہم اگر کلیئر نہیں کریں گے آج, نکلنا تو اس سے ہے نا, ہم نے نہیں سمجھے بات پہ, جو اس سے نکل گیا جہنم سے نکل گیا. ان سوالوں کو کلیئر کیے بغیر ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے, اور ان کو ہم نے کلیئر کرنا ہے, ہر حالت میں کلیئر کرنا ہے. ترکیب میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں اب چانس آج پھر ہی آج دوستو, یہ آپ سن لیں, اس کے بعد چانس پورا سال کیا پتا کیا کیا حالات ہمارے کیا کیا زندگی میں ہو, یہ سوچ لیں, کیونکہ کوئی جواب دے سکتا ہے ان چیزوں, جو ہو گیا تو ہو گیا, اب تو کیا کریں, پلٹ کے کیسے لائیں, بہت مشکل ہے, بہت برباد ہوئی زندگی. اب اللہ چانس دے رہا ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکتے, بس ایک چانس ہے, اور وہ چانس صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا, پرومس کرنا پڑے گا. کیا کرنا ہے؟ پرومس, وعدہ. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک وعدہ کرنا ہے کہ اللہ سکین کیا ہے, بہت سخت بیمار ہے, اب اللہ کے حضور میں داخل ہے, اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے, تو اللہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس نے وعدہ کر لیا وہ بخشا گیا, یا سن, بخشش کس پہ ہوگی؟ اللہ سے کانٹیکٹ کرنے پہ ہوگی. جس نے وعدہ کر لیا آج شب قدر میں, شب قدر ہے اس چیز کا نام, تو کیا انسان, وہ عورت, وہ مرد جو بخشا گیا, اور جس نے آج وعدہ نہیں کیا, بے شک سجدوں میں پڑا روتا رہو, قرآن پڑھتا رہے, چیخیں مارتا رہے, جو کچھ کرتا رہے, اور وعدہ نہیں کیا, اس نے ضائع کر دیا, اس کو جواب دینے دینا پڑے گا. اس چیز وعدہ کیا کرنا ہے ہم نے بھائی؟ وعدہ اللہ سے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پچھلا حساب تم کیا دیں تجھے, اب ہمارے پاس تو کوئی نہیں حساب. آج شب قدر تک جو میری زندگی ہے تو دیکھ رہا ہے, بالکل جو حالات میرے ہیں تیرے سامنے, پلے ہی کچھ نہیں, خرافات میں سارا کچھ ایکس تسلیم کر رہے ہیں. وعدہ ایک میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے سہارے پر, کہ انشاءاللہ جتنے معاملات آج میں نظر آ رہے ہیں یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں. سبحان اللہ, بس یہ ہمت چاہیے, جہاں کھڑا ہے وہیں زندگی کو چینج کر دے اپنے, جہاں کھڑا ہے نا, ہاتھ جب اٹھے ہیں نا اس طرح, تو یہی زندگی چینج ہو رہی ہے انسان کی. دوبارہ صبح اس جگہ پہ نہ جائے جس جگہ سے اس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی رحمت کو امید رکھنا, کیونکہ دو چیزیں ملنی ہیں آج, یا جہنم اور یا جنت. بس وہی آدمی جیت جائے گا کہ جس نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا, اور صبح اس جگہ پہ نہیں جا رہا, صبح اس کی زندگی سے وہ کام نہیں ہو رہا جس چیز کا وہ وعدہ کر کے آیا اپنے رب کے سامنے. وہاں ڈکوسلے نہیں چلتے, تین تین گھنٹے کی دعائیں, ایک ایک گھنٹے کی دعائیں, اور عربی میں بھی, فارسی میں بھی, اردو میں بھی, پنجابی میں بھی, گجراتی میں بھی, دھاڑ ماڑ کر رہے ہیں, ان باتوں میں کیا رکھا دوستو؟ اور صبح آ کے پھر وہی کام کرنے, وہی بیماری, وہی ظلم کرنے, وہی حرام کاری, وہی سب کچھ, وہی دنیا. بڑے خوش ہو گئے, مجھے یہ سمجھ آتا کہ جب عیسا اچھی راتیں ہمیں دی ہیں, شب قدر دی ہے, یہ ختم قرآن ہوتا ہے, تو اس وقت مسجدیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ دس منٹ پہلے جانا پڑتا ہے مسجد میں, تو بھی یہ جی بخشوانے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی ایک ٹریڈیشن دیکھیں آپ, کس طرح بخشائیں گے جی, کہ فلاں شیخ آ گیا, دعا مانگیں, سب بخشے گئے, چلو کڑک. آج یہی ہوگا نا انشاءاللہ, ہر مسجد نہیں ہوتا ہے. بخشانا ایک پرسنل معاملہ ہے انسان کا, وہ میرے لیے کیا دعا کرے گا, اس کو کیا پتا میرا کیا غم ہے میرے رب کے ساتھ, کہاں پھنسا ہوں میں, کیا مجبوری مجھ سے کوئی کام کرا رہی ہے, وہ تو ایک جنرل دعا ہے, دعا چل رہی ہے, نہیں سمجھ بات. اصل غم تو یہ, اگر اس طرح وقت ضائع کر دیے, دو تین گھنٹے ہیں, مارے گئے, کونے میں بیٹھ جاؤ, کونے میں بیٹھ کے کپڑے اتار دو, سارے ٹوپی اتار دو, بس شریر لباس پہن کے جھک جاؤ, اللہ کے رونا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ ننگا منگا تیرے پاس آ گیا ہوں, یہ دے ڈیڑھ گھنٹہ ہے, یہ میں کر سکتا, کچھ نہ عبادت اس میں کرو, یہ اس کو میرے مولا وعدہ میرا تو لے لے, انشاءاللہ کل کے بعد زندگی اسی کپڑوں کے ساتھ اٹھ جاؤ اور زندگی گزارو, انشاءاللہ بخشے گے. نہ کوئی مجمعے کی ضرورت ہے, نہ کوئی ترنم کی ضرورت ہے, نہ کوئی لمبی چوہوں کی ضرورت ہے, نہ کوئی یہ سب ڈراموں کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں, یہ رات ایسی نہیں ہے, ये रात तो पर्सनल है, मेरे पर्सनल चीजों को कौन कौन जा सकता है स्वयं मेरे रब के, आप मेरे लिए क्या मेरे दुआ में हो सकता है, आप तो मुझे कहेंगे इनको बख्श दिया जाए, फलां कर दिया जाए, दोजक से बचा दो, ये सब कर दो, तो दोजक से बचूंगा जब मेरा पर्सनल जो चीज मामला अल्लाह के साथ है वो सही होंगे, उसकी दुआ से मेरा तो सही नहीं हो सकता काम। बड़ा एक बहुत सेंसिटिव मैं आपको एक मसला तो नहीं है, एक कैफियत बता रहा हूं अपनी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, सच है या नहीं, आप कैसे कर सकते, चलो मैं दुआ करूं, मैं तो वही दुआ करूं, मुझे क्या पता कि बेचारे क्या प्रॉब्लम है, इस किस गुनाह के अंदर फंसा है शख्स, और किस चीज किसने माफी मांगनी है अपने रब से, किसने ये अटका हुआ है, मुझे क्या पता इसका, मैं तो वही कहूँ रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसनत फिर आखिरत हसनत आज़म नार, मैं तो अपने लिए कर गया सब कुछ, मुझे पता है जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, इन दोनों से वही बख्शिश होगी जो जनरल हो रही है, असल वादा जो आपका है वो तो वही होगा, बिल्कुल फारिग होकर कमरा बंद करे आदमी है और करे बिल्कुल सब कुछ उतार दे, सीधा बिल्कुल नंगा पहुंचे, जैसे कफन ही पहनता आदमी, कफन वाला लिबास पहन ले, हमारा तो है ही लिबास कफन वाला अल्हम्दुलिल्लाह, है लिबास कफन वाला, एक ही धोती है अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर चादर, यही कफन होता है, पहन के बस सीधा अल्लाह के हुजूर बैठ दे कि आ गया नंगा अहराम के अंदर, आ गया मेरे मौला आज अहराम बांधा है मैंने हज का, तवाफ करा दे तो मक्के का आज मुझे बस, हाय हाय अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ हो जाएगा आप, बेहतर हरम में नहीं होगा बेहतर अतीक में होगा माशाल्लाह, आसमानों में हुआ है ना हरम, उसका तवाफ अल्लाह पाक करा देंगे, याद रखें तो भाई ये एक तरीका है मेरे दोस्तों मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो समझ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने नहीं समझना सुम्मुन बुक्म फुम, उसका तो कुरान ने फैसला कर दिया है, इन जालिमों को आप नहीं समझा सकते, ये तो जब आंखें खुलेंगी मुंह फटेगा ना तभी अपनी जगहों से हिलेंगे और अपनी रवशों को छोड़ेंगे, इन्होंने तो अपने खुदा बनाए हुए हैं, अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं, अपने इनके कुरान हैं, अपने इनका हिसाब है, इनको आप कोई नहीं समझा सकेंगे, अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर, दोनों चीज़ें पहलू बता दिए, लेकिन पैगाम जाना पैगाम पहुंचना जो उन्होंने कुरान में दिए सुनना ये तो हमें चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी और आपको हिम्मत बताए और सिखाए और करने की तौफीक दे, जो भी सुन रहे हैं हजरात औरत मर्द, आज की रात को ज़ाया कर दिया पूरा रमज़ान ज़ाया, बस जिसने आज सच्ची तौबा कर ली अल्लाह के हुज़ूर में और जिंदगी सुबह बदली हो जिसकी, उन जगहों से नफरत हो जाए जिसकी माफी मांग किया है, उन जगहों से नफरत हो जाए कि मुझे नफरत इस चीज से, मैं अल्लाह से वादा करें अब मुझसे ये काम नहीं होगा, तो इंशाल्लाह वो तो रब है करीम है रहमान है मालिक है खालिक है सब कुछ उसके अख्तियार है, उसके क्या है वो शादी की जरूरत है, जिंदगी बदल जाती है दिल बदल जाते हैं इंसान के, उसके बाद जो सख्ती है जो भी है जितनी आपने सुना है ये मेरे बयान बाद में सुनते रहना इंशाल्लाह, रमज़ान की यादें याद भी ताज़ रहेंगी और अपने वादे भी किए याद रहेंगे इंशाल्लाह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज अल्लाह के सुभान से कर्म और फजल से ये अल्लाह ने मेरे जहन में डाला और मैंने आपका हमने अर्ज़ की, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये नहीं, कितने इंपॉर्टेंट दुखती रंग है ना ये हमारी, वरना तो आम तकीजें अभी सुना देता आपको हजारों, अभी शब कदर की जो तारीफ शुरू करता मैं वाह वाह करते आप उड़ के चले जाते, फ़ायदा होता उसको कुछ फायदा तो इसके है जाके चुबा है जख्म पे मरहम लगता है ना जिस जख्म पे और दब दर्द देता है तो समझो इस दवा काम कर रही है, अगर जख्म पे आप दवा लगा रहे हैं कोई असर ही नहीं हो रहा समझो जख्म सही नहीं हो रहा है, जब चुबा जाके अंदर तो फिर पता चल जाओगे वाकई जख्म पे लग गया मरहम अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये काम नहीं करेंगे, तो मेरे भाई अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं और हिम्मत करें आज बहुत थोड़े कर दिन ही तो ख़त्म भी होगी रात तो शुरू होने वाली है, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे और इस पर हम पक्की सच्ची तौबा करें अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्ना कुफून तो हिब्लफ फाफुन्ना या करीम, यही है मकसद जो बताया गया हमें, वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।